तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। आज के दिन विशेष हमारे संगठन में भट्टी में बाबा के अमूल्य रत्न, जिन्हों को योग की गहरी अनुभूति है, सबको कराते भी है, योग के प्रयोग भी, उसके भी अनुभव अच्छे अच्छे हैं, ऐसे तो आप सब जानते ही हो। परिचय देना ऐसे लगता है जैसे सूरज के सामने दीपक, जिनका नाम ही उनका परिचय है, जिनका जीवन ही बेमिसाल है, जो दिव्य गुणों की खान है और इस बेहद यज्ञ की शान है। ऐसे सूरज भाई, आप सबको अपनी किरणों से, ज्ञान सूर्य ज्ञान की किरणों से प्रकाशित करेंगे। ऐसे तो पीस ऑफ माइंड में आप सब सुनते हैं, देखते हैं, सुबह सुबह 5 बजे भी बहुत ही तीव्र पुरुषार्थ के अंतर्गत पूरी सीरीज चल रही है। अभी पता नहीं, थोड़े दिनों से हमने भी नहीं देखा है, लेकिन मैं आई तब तक तो चलता था, और शाम को भी समस्या और समाधान इस टाइटल के अंतर्गत प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे, जरूरी, सब आवश्यक मानते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी आप देते हो। ऐसे साधारण माताएं भी आपके पास आकर जब समाधान मांगती है तो आप समाधान देते हो, फोन से भी कई बार पूछते हैं तो भी अच्छी तरह से प्रेम से जवाब देते हो, इसलिए आपकी जीवन बड़ी उच्च है लेकिन सरल है। जैसे कहते हैं हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, ये दिखाई देता है, सब अनुभव करते हैं। तो आज का आपका विषय है तपस्या द्वारा यथार्थ स्थिति। आप योगी तो आत्मा हो, तपस्वी हो, इसलिए आपके वाइब्रेशन ही यहाँ तपस्या की प्रेरणा देते हैं, सबको तपस्वी बना देते हैं। देख करके भी आप सब शरीर से डिटैच होकर बाबा के पास एकाग्र हो जाते हो, ऐसी आपकी शक्तिशाली स्थिति। आपने काफी लंबे समय से, सालों से अभ्यास करके बनाई है, तो अभी हम आपको नम्र निवेदन करते हैं कि इस विषय के अंतर्गत सभी को कुछ न कुछ मार्गदर्शन अनुभव के आधार से देंगे। आदरणीय सूरज भाई।
ओम शांति। खुश हैं सभी मधुबन में आकर? पहली बार आए होंगे मधुबन तो ऊपर? पहली बार रहे हैं ना सभी? भाई साहब भी बैठे हैं, बहुत अच्छा। बड़ी खुशी होती है आप सबको देखकर, दूर से आते हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि कहीं भी दूर से आना, और किस लिए आना, किस लिए आना? कई अच्छे संकल्प होते हैं ना आने के लिए, तो दूरी दूरी तो नहीं लगती, आनंद हो जाता है। मुझे याद है जब हम पहली बार आए थे बाबा से मिलने 68 में, तो तब तो ट्रेन थोड़ा धीरे ही चलती थी ना, ये फास्ट वाली तो निकली नहीं थी, तो सिरोही रोड आती है ना, फिर स्वरूपगंज, सिरोही रोड से आबू दिखने लगा था सवेरे, वो ट्रेन सवेरे पहुंचती थी, तो आबू को देख के मेरा मन बिल्कुल मगन होने लगा। सब तो सोच रहे थे आने वाला है आने वाला है, मेरा मन खो रहा था कि ये वो भाग्यवान पर्वत है जिस पर भगवान आते हैं। ऐसा खो गया मैं, जैसे ये पर्वत भी बहुत भाग्यवान है जिस पे ब्रह्मा के कदम पड़ते हैं, जिस पे भगवान की नजर पड़ती है। और ये स्थान जहां हम सब बैठे हैं, संसार में सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस लिए हुए है, पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर ज्ञान सरोवर का, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। सुना दूं छोटी सी बात, रशिया के ग्रुप जब यहां आने लगे तो कोई एक वैज्ञानिक भी आ रहा था, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट था ऐसे गोल वाइब्रेशंस नापने का। जब वो अब रोड पहुंचा उसका कांटा तेज चलने लगा आगे को, जब ऊपर चढ़ के आबू आया, वहीं उतर जाते थे पहले बस स्टैंड पे, तो उसका कांटा फुल हो गया, लास्ट जो उसकी थी नापने की वहां पहुंच गया, और जैसे वो मधुबन में आया जोर से उसने टक्कर मारी और टूट के गिर गया। उसने बताया, हम लोगों को भी नहीं पता था, हम तो यहां रहते थे, उसने बताया झोपड़ी से और शांति स्तंभ सड़क बना दो, इस मार्ग पर संसार के सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, ऐसे दुनिया में और कहीं नहीं हैं। हम तो जानते थे ब्रह्मा घूमे थे यहां, तब यहां सीजन नहीं रहते थे, बाबा के समय शांत रहता था। दिवाली पर दशहरे पर पार्टी आती थी और मई जून में, बस इसके अलावा शांत, बाबा और 15-20 यहां रहने वाले लोग, बाबा एकांत में गहन तपस्या में। मुझे याद है, मेरा वो सुंदर अनुभव याद रहता है मुझे, ये जो बगीचा है ये यहां तक था, यहां तक, और इसमें अंगूरों की बेल बहुत सुंदर थी उन दिनों। तो बाबा अपनी झोपड़ी में बैठे थे, बाबा का लास्ट ईयर था ना इस धरती पर 68, झोपड़ी में बैठे। मुझे घूमने का शौक होता था बचपन से, मैं झोपड़ी के ये बगीचे के इधर उधर घूम रहा। ये सुंदर व्यवस्था नहीं थी जो आज है, बिल्कुल गांव जैसा था, सिंपल, नीचे फर्श भी नहीं था, मिट्टी थी। ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस हो रहे, खींच के भाग जाएं बाबा के पास, लेकिन डर लगता था ना, हम छोटे बच्चे थे, बाबा के पास जाने में डर लगता है ना, इतने पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा के। यहां तपस्या की प्रजापिता ब्रह्मा ने, यहां तपस्या की जगदम्बा सरस्वती ने, यहां तपस्या की बहुत सारी दादियों ने, दादी जानकी बहुत समय आ रही, दादी प्रकाशमणि तो थी ही, दीदी मनमोहिनी थी उनसे पहले। तो ये स्थान तपस्या का स्थान है, और बाबा ने इसी स्थान के लिए कहा था हम लोगों को, मुझे याद रहता है हमें कहा था मधुबन वालों को, ये स्थान अंत में जादू की नगरी बन जाएगा, तुम्हें इसको व्यर्थ से मुक्त करना है, बस तुम्हारा काम एक, जो भी यहां आएगा वो समय आने वाला है, यहां आते ही उसे लगेगा ये क्या है, आते ही उड़ गए, डिवाइन हो गए, आनंदित हो गई आत्मा, आते ही खो गए, कहां आ गए, ऐसा ये स्थान होने जा रहा है। तो आप सबका भी ये तपस्या का योगदान इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। मैं तपस्या को आपको पांच रूपों पे कहता हूं, नोट कर लें जो नोट करना चाहते हैं। पहली तपस्या हमारी अशरीरी होने की, दूसरी हमारी तपस्या आत्मिक दृष्टि बनाने की, तीसरी तपस्या स्वमान की, चौथी तपस्या बाबा से योग लगाने की भिन्न भिन्न तरीकों से, और पांचवी तपस्या बुद्धि को स्थिर करने की। श्रेष्ठ स्थिति क्या है? क्योंकि सभी ये कहते हैं अच्छी स्थिति हो, हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो, बहुत अच्छी हो, पर वो क्या है? श्रेष्ठ स्थिति का अर्थ है संसार के आकर्षणों को देखते हुए उनसे डिटैच रहें। एक चीज, दूसरी ये जो माया है सारी, पांचों विकार और सारी बातें, बहने इधर आ जाओ, देखो इधर खाली पड़ा, और सारी बातें जो हैं पांच विकारों के साथ, इनसे भी आत्मा मुक्त हो जाए। परिस्थितियों में स्थिति एक रस रहने लगे, स्थिति बिगड़े नहीं, संकल्पों में बहुत दृढ़ता हो, छोटी-छोटी बातों में हम घबरा न जाएं, जो कुछ होने जा रहा है उसको हम देख सकें, स्थिति अचल अडोल हो जाए, ये सब श्रेष्ठ स्थिति है। जिसको फीलिंग बहुत आती हो, जिसके विचार निगेटिव हो, जो ईर्ष्या द्वेष क्रोध अहंकार के वश हो, उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। तो हम सभी बहुत अच्छी साधना करें, लक्ष्य बना लें, बाबा मिला है और वो हमें सब कुछ देने आया है। आया है या नहीं? उसने कहा है मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। ये बाबा के महावाक्य हैं। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर, खाली तो होता नहीं हो कभी, पर जैसे एक टीचर सब कुछ पढ़ा दे फिर कहेगा ना भाई सब पढ़ा दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, है तो उसके पास सब कुछ पर सब पढ़ा दिया। तो बाबा हमें सब कुछ देने आया है, क्या हमारे अंदर लेने का उमंग है? बोलो है? लेंगे तो कुछ करना पड़ेगा। किसमें लेंगे? बुद्धि रूपी बर्तन में। बुद्धि को यहां बर्तन तो छोटा होता है ना, बुद्धि एक बहुत बड़ा स्टोर रूम है हमारे पास, जिसमें हम सब खजाने भरते हैं। और हमें जानना चाहिए ये हमारे अब के सूक्ष्म खजाने भविष्य भाग्य का निर्माण करते हैं। आपने अगर संडे की मुरली सुनी हो, यात्रा में रहे होंगे आप, संडे को अव्यक्त मुरली जो आई थी, जिनके पास यहां ज्ञान धन बहुत होगा, जो ज्ञान धन को यूज करेंगे उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि कभी भी उन्हें वजीरों की जरूरत नहीं। सत्युग तीर्था में तो है ही नहीं, द्वापुर में भी वो बहुत बुद्धिमान होंगे, व्यक्तिगत कार्यों में भी उनकी बुद्धि ठीक काम करेगी, यानी वो अति बुद्धिमान होंगे। जिन्होंने ज्ञान के धन को यूज कर लिया वो जन्म जन्म धन धान्य से भरपूर रहेंगे। जिन्होंने श्वासों को सफल कर लिया उनका कभी श्वास बंद नहीं होगा, चारों युगों में भगवान की गारंटी। हार्ट और तीसरा हार्ट अटैक नहीं होगा, श्वास नहीं रुकेगा, अकाले मृत्यु भी नहीं होगी और सदा स्वस्थ भी रहेंगे, बहुत जन्म स्वस्थ बीतेंगे। तो सूक्ष्म खजाने स्थूल भाग्य का निर्माण करते हैं। हम अपनी बुद्धि को कैसा बनाएं? अब है जब बुद्धि में माल भरना है ईश्वरीय खजाने, तो बाकी चीजों को निकाल दें, सफाई जिसे बाबा कहते हैं, बुद्धि को क्लीन करो। बुद्धि में तेरा मेरा व्यर्थ ये वो गंदगी पर चिंतन अगर ये भरा हुआ है तो बाबा के लिए जगह ही कहाँ है। कईयों ने अपनी बुद्धि को इतना फुल किया हुआ है कि भगवान भी बैठना चाहे उसको तो थोड़ी सी जगह चाहिए ना, उसके लिए भी नहीं बचती, तो खजानों के लिए कैसे बचेगी? सोच लो सभी। भगवान को अपनी बुद्धि में बैठाना है, सर्व खजानों से स्वयं को भरना है, तो खाली कर दो। न किसी के लिए बुरी भावना भरी हो, न क्रोध भरा हो, न अभिमान भरा हो, ये विकार भी तो गंदगी है, ये भरे हैं बुद्धि में, सब बुद्धि में है। एक काम करेंगे, ये जो कि बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र, और तपस्या में इस तीसरे नेत्र के द्वारा विजुअलाइजेशन, ये इंग्लिश का शब्द सब समझते होंगे, माताएं भी जान लें सभी, विजुअलाइजेशन माना स्वरूप को देखना। चाहे हम अपना सतयुगी स्वरूप देखना चाहें, चाहे हम अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखना चाहें, चाहे हम परम धाम को देखना चाहें, वहां रहने वाले बाबा को देखना चाहें, सूक्ष्म वतन को देखना चाहें, या आत्मा को देखना चाहें, वो तभी होगा जब बुद्धि का नेत्र स्वच्छ है। बिना बुद्धि को स्वच्छ किए कोई योगी नहीं बन सकता। अब जिसको बनना हो वो ये काम करे। दोनों काम नहीं होंगे कि हम व्यर्थ में भी रहें और योगी भी बने, इसलिए योगी को सब कुछ छोड़ना पड़ता है। घरवार नहीं, ये व्यर्थ। ऐसा संकल्प कर दें, व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं। जैसे आप सभी जो पढ़े हैं लौकिक, अगर आपके पास कॉमर्स का सब्जेक्ट था तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि फिजिक्स की क्लास में लेक्चरर क्या पढ़ा रहा, जरा देख को तो हूं। सोचा किसने? आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि इंग्लिश की क्लास में आर्ट्स में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जरा पता तो करूं, किताब तो देखूं कैसी कैसी आई बाजार में, कोई नहीं सोचता ना। संकल्प कर दें, मेरा मुख्य सब्जेक्ट है योग, व्यर्थ मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, परचिंतन मेरा सब्जेक्ट नहीं है, दूसरों को देखना मेरा सब्जेक्ट नहीं है, दूसरों को तो द्वापर युग से देखते आए, अब जरा अपने को देख लें। द्वापर युग से मनुष्यों को देखते आए, अब जरा भगवान को देखें। अपने से बात करें सभी, ऐसी स्वयं से बात करना स्वयं को योग युक्त बनाने का तरीका है। योगी वही बन सकते हैं। अब दूसरी चीज है हमारे पास मन। योगी वही बन सकते हैं जिनका मन कैसा हो। अब मन का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्मता है मन की। यद्यपि बड़ा स्थान बुद्धि का है, बाबा कहा करते हैं तुम आत्मा हो राजा, बुद्धि है तुम्हारा मुख्यमंत्री और मन है मंत्री। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। बुद्धि माना विवेक अर्थात ज्ञान, उसके द्वारा हम मन को कंट्रोल करते हैं। मन जितना पॉजिटिव है उतना ही योग सरल है। मन में जितने सुंदर विचार हैं योग उतना ही सरल है। मन जितना स्वमान में स्थित है उतना ही योग सरल है। तो मन की भी एकाग्रता, बुद्धि की भी एकाग्रता। सभी जो बहुत अच्छे बुद्धिमान बाबा के बच्चे बैठे हैं, एक बात पे ध्यान दें, हम सभी के मन में क्रिएटिव पावर है। ध्यान से सुन लेंगे। श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करने की शक्ति मन में है। मन को हम कहते ही हैं, डिफाइन करते हैं, मन माना पावर ऑफ थॉट, संकल्प शक्ति है मन। मन में श्रेष्ठ विचार रचने की शक्ति है। अगर हम श्रेष्ठ विचार रचेंगे तो व्यर्थ विचार समाप्त हो जाएंगे। व्यर्थ को रोकने का एक ही सुंदर तरीका, व्यर्थ को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता, मन में सुंदर विचारों की रचना करें, व्यर्थ समाप्त। क्योंकि आजकल बहुतों की ये शिकायत आती है कि निगेटिव इतना चल रहा है हम उसे रोक नहीं पाते। दुखी हो रहे हैं ब्राह्मण, नए नए कई पुराने भी। इसलिए अपने मन की शक्ति को यूज करें सुंदर संकल्प क्रिएट करने में। और सुंदर संकल्प क्रिएट करने का तरीका है मुरली और स्वमान। आपने एक स्वमान लिया, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो मन में सुंदर विचार उठेंगे, मुझे सबका कल्याण करना है, मेरे मन में किसी के लिए घृणा कैसे हो सकती है, मुझे तो सबका कल्याण करना है, सबको सुखी बनाना है, मैं किसी को दुख कैसे दे सकती हूं। चिंतन महान शुरू हो जाएगा। इसलिए मुरलियां, मुरलियों का अध्ययन और स्वमान की प्रैक्टिस महान विचारों का निर्माण कराती है। जिसके पास चिंतन शक्ति नहीं है, बहुतों के पास नहीं है, अगर उन्हें कह दिया जाए कि जरा 10 लाइन लिख के लाओ कुछ चिंतन करके, तो कहेंगे हमारा चिंतन होता ही नहीं, और व्यर्थ का चिंतन करने का मौका मिल जाए तो 4 घंटे भी हो सकता है। समर्थ का चिंतन 10 मिनट नहीं, व्यर्थ का चिंतन 4 घंटे। जहां व्यर्थ का चिंतन है वहां समर्थ को स्थान नहीं होता। तो संकल्प क्रिएट करें तब हम अच्छे योगी बन जाएंगे। मैं आपको 7 दिन की 7 योग की प्रैक्टिस बता देता हूं। मैं क्लास को इस लक्ष्य से ले रहा हूं कि वहां जाकर भी आप इस साधना को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है रोज की साधना का। देखो, आप अपने जीवन में 3 मास का एक प्लान बनाना, 3 मास के लिए एक धारणा ले लेना, 3 मास तक मैं संतुष्ट मनी बनकर रहूंगी, एक धारणा। अगले 3 मास मैं तो सदा खुश रहूंगा, अगले 3 मास मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, ऐसे ऐसे बनाओ प्रोग्राम। फिर 3 मास मैं संसार को साक्षी होकर देखूंगी, 3-3 मास की प्लानिंग हो सकता है। बहुत सारी ऐसी सुंदर धारणाएं हमारे पास हैं, कम से कम 16, 4 साल चल सकती हैं। 3-3 मास किसी धारणा को आप अच्छा समझें और करना है और 3 मास। मान लो आपने एक धारणा ले ली, मुझे 3 मास के लिए फीलिंग प्रूफ बनकर रहना है, नो फीलिंग, इस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी प्लानिंग, रोज के लिए एक योग की प्रैक्टिस, एक स्वमान, वो मैं आपको लिखा देता हूं, आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं ऐसे लिखा रहा हूं, कोई फिक्स नहीं है। पहली पॉइंट लिख लो, स्वमान रहेगा मैं एक महान आत्मा हूं। आगे बढ़ो माताएं, बहुत जगह, आ जाओ, भीड़ में न बैठो, मैं एक महान आत्मा हूं। भाई कोई बैठा है माताओं को, जरा लिखो, मैं एक महान आत्मा हूं। योग की प्रैक्टिस करेंगे, देखो बहुत सिंपल योग की प्रैक्टिस, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं, जैसे बाबा परम धाम से अवतरित होते हैं, मैं आत्मा भी परम धाम से अवतरित होकर मस्तक सिंहासन पर बैठ गई हूं। घंटे में 2 बार कर लेना, लंबे टाइम की जरूरत नहीं, आधा मिनट, और आप इसका इफेक्ट देखना, आधा मिनट का इफेक्ट आधा घंटा चलेगा। फिर संकल्प कर लिया, मैं आत्मा इस तन में अवतार हूं, परम धाम से उतरी प्रकुटी की कुटिया में बैठ गई हूं, आई हूं, ये देह अलग है मैं अलग हूं। इन दोनों की प्रैक्टिस सवेरे बहुत अच्छी कर लेना, और हर घंटे में लक्ष्य बना लें 2-3 बार करने का, सहज कर्म योग हो जाएगा। दूसरा दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। बस सिर के ऊपर देखेंगे उसे, परमधाम में नहीं, सिर के ऊपर, परमधाम से उतर के बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए हैं। ये सब मुरलियों में बहुत आ चुका है। तीसरा दिन, मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं, और योग अभ्यास करेंगे, परम धाम से बाबा की पवित्र किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। चौथा दिन, स्वमान लेंगे मैं विजयी रतन हूं, और प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास हूं, बाबा की किरणों के नीचे हूं। पांचवा दिन, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, और मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूं, बाप दादा सामने, और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। छठा दिन, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, दूसरा भी लेंगे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है, सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं। सातवां दिन मैं विश्व कल्याणकारी हूं, स्वमान और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बाप दादा का आह्वान, बाबा को बुलाएंगे और फील करेंगे दोनों आ गए हमारे घर में या मेरे सामने या ऑफिस में दुकान पर, हर घंटे में एक बार बहुत गुड फीलिंग होती है इसकी। आपको महसूस होने लगेगा जैसे ही हम बुलाते हैं बाबा दौड़े चले आते हैं और आते ही पूछेंगे, बोलो बच्चे क्या चाहिए, कैसे याद किया। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, कहीं भी कठिनाई हो जाए फिर आदत पड़ जाएगी, कहीं भी कठिनाई हो जाए फौरन बाबा कहा और आ गए। विनाश काल में ये होगा, जहां तहां कठिनाइयां होंगी, कहीं फंस गए आप, कहा बाबा आओ, बस आ गए बाबा, रात पकड़ के आपको निकाल देगा। तो इस तरह ये सात दिन का एक सिंपल प्रोग्राम, और भी कुछ आप ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार, मुरलियों में बहुत चीजें आती हैं। अब एक दूसरी बात पर हम आ जाते हैं, एक बहुत अच्छा स्लोगन आपको याद रखना है जो आपके सेंटरों में भी कहीं ना कहीं लिखा होता है, स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। और स्वस्थिति का आधार है स्वमान, हमें छोटी टिप्स पुरुषार्थ की, श्रेष्ठ स्थिति की आपके सामने रख देता हूं। आपको माया को जीतना है, क्योंकि माया को जीतना ही तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेंगे हम, तो सवेरे उठते ही याद करना, लिख लो अब, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी रतन हूं, ये दो स्वमान याद करके ध्यान से सुन ले अब आप, जिस माया के स्वरूप को आप जीतना चाहते हैं 21 दिन तक उस पे काम करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्रोध को जीतना चाहते हैं तो संकल्प करेंगे, अब तीसरा संकल्प, मैं क्रोध मुक्त हूं, मेरा चित्त संपूर्णतया शांत है, या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। सात बार करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजय रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, मेरा चित्त शांत है। सात बार आपको काम पर पूरी विजय पानी है, मैं विजय रतन हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजय रतन हूं, काम जीत हूं, मैं परम पवित्र हूं। तो पवित्र संस्कार जगने लगेंगे। सात बार आपको अनासक्त वृत्ति बनानी है, मैं विजय रतन हूं, अनासक्त हूं। बहुत ज्यादा ध्यान देना है एक विशेष पुरुषार्थ पर, जो मुरली हम अब से तीसरा संडे पहले सुन चुके हैं, मैं और मेरेपन का त्याग, अर्थात अभिमान का त्याग, अहंकार का त्याग। जिसको स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, सेवाओं को सफल करना है, अपने लौकिक घर को निर्विघ्न बनाना है, क्रोध को जीतना है, वो मैंपन को जीते। पता चलना चाहिए कहां मैंपन हमारे अंदर काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है किसी में मैंपन बहुत ज्यादा होता है और उसको उसका पता नहीं चलता। वो कहते भी रहेंगे मैंपन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने मैंपन को मनुष्य नहीं पहचानता। बड़ी सूक्ष्मता है इसमें, और ये जान लें, संगम युग पर सारे कार्य कहां से कंट्रोल्ड हैं? रिमोट कंट्रोल कहां है? ऊपर है, वो बाबा के हाथ में है, वो नीचे वालों के पास है ही नहीं। हमने साकार में बाबा की कुछ बड़ी पावरफुल मुरली सुनी हुई है, आपने भी कभी सुना हो? उस दिन तो बाबा ऐसा लगता था शिव बाबा भी बड़े नशे में बैठा है। आज कहा, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं जिसको जो चाहे बनाऊं, मैं गरीबों को साहूकार बनाऊंगा, साहूकारों को गरीब बनाऊंगा। यही लैंग्वेज बाबा की। अगर आप कैसेट में वो मुरली सुने कहीं है तो जरूर, क्योंकि हमने बाद में भी वो सुनी थी, बहुत सुंदर मुरली है। उससे पता चलता है कि बाबा अपनी शक्तियों को छुपाए बैठा रहता है। बच्चे साधारण है ना, अभी डर जाएंगे, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है। इसलिए मैंपन को जीवन में आने नहीं देना है। मैं छोटी सी कहानी सुना दूं पांडवों की। पांडवों की लास्ट सीन है, अचानक युधिष्ठिर को फील होने लगा कि मेरी सारी धर्म की शक्ति खत्म हो गई है। भीम को महसूस होने लगा कि मेरे पास बल नहीं रहा है। अर्जुन को भीलों ने लूट लिया, आबू में लूटा था। आबू के पास से जब गुजर रहा था ना द्वारका से, तो भीलों ने लूट लिया। उसके लिए हिंदी में बहुत सारे गीत बने हुए हैं। वही अर्जुन था, वही गंडीव धनुष था, वही बाण थे, वही विद्या थी उसके पास, लेकिन भीलों ने डंडों से लूट पीट लिया सबको, सब लूट दिया। तो युधिष्ठिर ने दूत को दौड़ाया कि जाओ श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ, कुछ हो रहा है गड़बड़। दूत गया तेज घोड़े पर, पांच सात दिन में वापस आ गया और संदेश लाया कि श्री कृष्ण तो गए, ऊपर गए। तो पांडवों को, जो बहुत बुद्धिमान थे, अभी ये समझ में आ गया कि ये सब तुम्हारी शक्तियां नहीं थी, तुम्हारे साथ ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही थी। तब उन्होंने सोचा, अब हम भी, जब श्री कृष्ण ही चले गए, हम भी चलते हैं। हम सब भी अच्छी तरह विवेक से जान लें, अनुभवों से जान लें, हमारे साथ ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं। अगर बाबा उन शक्तियों को हटा ले तो वी आर नथिंग, हमें लगेगा हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हैं हम, ज्ञान भी देने को नहीं रहा है, क्या सुनाए किसी को, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ऐसा लगने लगेगा। जो हम विश्व को चेंज करने का चैलेंज करते हैं, ये सब बाबा की शक्तियां हैं। तो मैंपन का कहीं भी स्थान न हो, इस पर एक अच्छी साधना करनी है। ये भी हमारी सब साधनाएं हैं, प्योरिटी भी हमारी साधना है, संस्कारों को डिवाइन बनाना भी हमारी तपस्या है। योग लगाने के साथ साथ ये सब भी तपस्याएं हैं, साधना। ये हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, इसका सीधा सा अर्थ होता है, दो कर दो इसको, साध ना साधो। हिंदी में कहते हैं साधो, कर लो इसको अपने कंट्रोल में। तो मन को भी साधना है, बुद्धि को भी, संस्कारों को, प्योरिटी को, मन को, सबको साथ देना है, एकाग्र कर देना है, सॉफ्ट बना देना है। ये हमारी साधनाएं हैं। सभी को आत्मिक दृष्टि की साधना पर भी बहुत ध्यान देना है। आप एक हफ्ते के लिए मेरे कहने से जरा करके देखना, धुन लगा देना, जिसको भी देखें मस्तक में चमकती हुई मणि, आपके 90% व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। करके देख सकते हैं। भोजन में बहुत सारा चेंज कर दें, बहुत सारी वासनाएं डेड हो जाएंगी। हमारे यहाँ भोजन पे जरा हम कम ध्यान देते हैं, जरा टेस्टी चाहिए सबको, मिर्ची भी अच्छी चाहिए, घी तेल भी अच्छा डालना चाहिए, सबको आदत पड़ गई है ना। पर अगर सिंपल भोजन कर देना, कर्मेंद्रियां शीतल होने लगेंगी। कोई कोई हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं भी कई कुमारों को ये करा देता हूँ। जब कोई कहते हैं इम्प्योरिटी मुझे बहुत तंग कर रही है, तो मैं पहले उनकी डाइट चेंज करा देता हूँ। एक कुमार ने तो बहुत ही वंडरफुल एक काम किया, उसको प्योरिटी बहुत चाहिए थी, इम्प्योरिटी बढ़ी हुई थी। मैंने उसको भोजन का एक सिंपल सा चार्ट बना के दे दिया, ऐसे ऐसे खाना। उसने दो चार दिन तो वो खाया, फिर क्या किया, उसको लगन लग गई, तो मुझे तो गाय के दूध पे रहना है अब। और उसने गाय का दूध पीना शुरू किया, पिया बहुत सारा, सारे दिन में 2-4 लीटर। भूखा रहेगा तो कैसे काम चलेगा, उसको काम भी करना है। लेकिन उसने कहा 2-3 मास में ही मेरी प्योरिटी परफेक्ट हो गई है। मुझे तब मिला जब उसको 4 मास हो गए थे दूध पीते, केवल दूध। मैं तो उसको बहुत सिखाया था, एक टाइम भोजन फ्रूट, एक टाइम कच्चा आहार, सब्जियां, खीरा टमाटर ये सब। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ के दूध शुरू कर दिया, और उसको इतना आनंद आ गया, उससे शरीर भी ऐसा रहने लगा, लाइट, एनर्जेटिक, वेट भी आप ही कम हो गया, लेकिन कमजोरी नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा आप भी ऐसा कर लें, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया है ना। आप सब भी दूध पीने लगे, गाय का दूध ही न मिले फिर आपके शहर में, क्या सारा ब्रह्मा कुमार कुमारियां पी गए। हम सभी साधनाएं करेंगे बहुत अच्छी। साधनाओं के लिए किस किस को लगन है साधना करने की, जरा देखूं मैं। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, सचमुच उठाओ। पहली चीज, रोज एकांत, कम से कम आधा घंटा। मैं मधुबन के अपने शुरू के दिनों में रोज 6 घंटे एकांत लिया, 69 शुरू से ही, जनवरी से, और कम से कम 16 साल 6 घंटे, फिर 5, फिर 4, 4 बहुत समय चलता रहा। फिर मेरे काम बढ़ता गया, फिर वो कम होता गया धीरे धीरे, अब इतनी सेवा बढ़ गई कि अब बिल्कुल कम हो गया। मैं खुद को सोचता हूँ कि मेरा एकांत तो पूरा हो गया, तब मुझे याद आ जाते, तुरंत बाबा एक बात याद दिला देता है, तब बाबा कहा करते थे अब से 45 साल पहले, अब समय है तपस्या करने का और फिर समय आएगा सेवाओं का। तपस्या का समय नहीं मिलेगा, मुझे तो मिलता है, पर जिनको तपस्या की प्रैक्टिस नहीं उनसे तपस्या होती नहीं। जब सेवाएं बढ़ जाती हैं, एकांत, बोलो पसंद है या एकांत में बोर हो जाते हैं? एकांत में सबसे अच्छा तरीका है स्वयं से बात करें और स्वमान का अभ्यास करें, एकांत को आप बहुत एंजॉय करेंगे। चलो गीत का टाइम हो गया, अब एक स्वमान में स्थित होकर सभी बैठेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी हूं और पूर्वज हूं, और बाबा से किरणें लेकर फैलाएंगे सारे संसार में। जिसको श्रेष्ठ योगी बनना हो और अपने घरों के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल बनाने हो, अमृत वेले के अलावा 15-15 मिनट 3 बार योग में अवश्य बैठें, अच्छी एकाग्रता करें। नहीं योग लगता, कमेंट्री चलाएं, सीडी चलाएं, गीत बजाएं, कोई भी साधन अपनाकर योग का अभ्यास बढ़ाएं। एक बहुत अच्छी चीज मैंने कभी कभी कराई और सेंटरों में भी कराई, अव्यक्त बाबा की मुरली चला दो अपने घर में। आप करके देखो कुछ दिन, 15-15, 20-20 मिनट घर में कभी भी 2-4 बार मुरली चला के देखो, आपके घरों के वाइब्रेशंस कितने अलौकिक हो जाते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ थोड़ी सी बातें रखता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं योगी जीवन के लिए। सवेरे उठते ही पहले 10 मिनट में सभी स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से चार्ज करेंगे। पहले 10 मिनट हमारे जीवन के लिए रोज मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है। भाग्य विधाता समय है ये, जैसे संकल्प हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं, मेरा आज ऐसा होगा, उठते ही आज मेरा आज खुशियों से भरा होगा, आज कदम कदम पर सफलता प्राप्त होगी, आज मेरे जीवन में सभी विघ्न समाप्त रहेंगे, आज मैं जिसके पास भी मिलने जाऊंगा सफलता प्राप्त करूंगा। ऐसे एक 5-पॉइंट प्रोग्राम बना सकते हैं आप, मेरा आज ऐसा होगा। उठते ही सुंदर विचार करने हैं, कमजोर विचार नहीं। कई लोग उठते ही कमजोर विचार करते हैं, मेरा योग ही नहीं लगता, बाबा मन बहुत भटकता है, बाबा थोड़ा ही पकड़ेगा आपके मन को, बाबा मैं तो आपकी गरीब बच्ची हूं, जो सोचेंगे वही हो जाएगा, मैं तो बहुत दुखी हूं। सोच लो जो भी सोचते हो गलत। उठते ही क्या सोचना है, आंख खुली बाबा को गुड मॉर्निंग की, पहला संकल्प करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, हाथ ऊपर करना, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको लाखों लाखों बार शुक्रिया, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। संकल्प करो अच्छे अच्छे, सफलता तो मेरे आगे पीछे घूमेगी, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। सुंदर संकल्प करना, कर सकते हैं। सवेरे अपने को चार्ज कर दो, देखो सारा दिन कैसे बीतता है। ये कला सबको अपनानी है, आपको नए नए विचार रोज मिलते जाएंगे। आपके यहां कोई सेवा का प्रोग्राम हो रहा, टीचर बहने बैठी हैं, एक हफ्ते पहले से ही संकल्प करने लगो, इस प्रोग्राम में इतने लोग आएंगे, इतने बाबा के बच्चे बनेंगे। कई लोग पहले ही वीक संकल्प करते हैं ना, पता नहीं कोई आएगा या नहीं आएगा, इतना खर्च कर रहे हैं, कोई निकलेगा भी या नहीं। ये सब आपके हाथ में है, सवेरे उठते ही संकल्प करो। प्रोग्राम कर रहे हैं, 20,000 लोग आएंगे और 200 बाबा के बच्चे पक्के बनेंगे। रोज संकल्प करा दो टीचर बहने, सबसे एक ही संकल्प, अंदाज बता रहा मैं। कोई भी आप सेवा करते हैं, कहीं सेवा नहीं शुरू कर रहे हैं, संकल्प करो एक साल में देवकुल की सारी आत्माएं आ जाएंगी। जहां इतनी इष्ट देव देवियां जा रहे हैं, वहां तो रेगिस्तान में भी हरियाली छा जाएगी। संकल्प करो अच्छे अच्छे, देखो संकल्पों का प्रभाव आप देखना, क्योंकि ये सारे संसार का खेल संकल्प शक्ति से ही चल रहा है, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशन से प्रकृति से मिलके सब कुछ निर्माण कर रहे हैं। जितने हमारे संकल्प महान, उतना हमारा भाग्य महान होगा, हमारी प्राप्तियां महान होंगी। मैं एक उदाहरण दूं, इंचार्ज बहन ने एक टीचर बहन को कहा, वहां सेंटर खोल रहे हैं, तुम संभालो। उसको पहले से ही 10 लोगों ने बता दिया था, वहां सेवा बढ़ती नहीं। इसका मन उदास था, मैं वहां जाके क्या करूंगी दीदी, वहां तो सेवा ही नहीं बढ़ती। मेरे से पूछा, फोन किया, मैंने कहा तुम पूरा ही गलती कर रही हो, हो सकता है वहां की इस देवी तुम हो, समझ गए, तुम्हारे जाते ही सारे भगत भागे चले आए, अब तक दूसरी इस देवी जा रही थी जो उनकी नहीं थी, तो आएंगे कैसे भगत। संकल्प करो, जहां मैं जाऊंगी वहां हरियाली होगी, वहां बाबा का घर भरा हरा भरा होगा, सेवा तेजी से बढ़ेगी। अब उसमें उमंग आ गई, वो उसी उमंग से गई, सेवा बढ़ने लगी, जहां जो बढ़ी नहीं थी आज तक वहां बढ़ने लगी। हमारे संकल्प ही हमारे भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए जो जितने सुंदर संकल्प क्रिएट कर सकें, और वो भी खास सवेरे उठते ही, उठते ही संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, और दूसरा संकल्प, मैं बहुत खुश नसीब हूं। कल से ही करना है सब संकल्प, नहा धो के नहीं, बाबा के कमरे में आके नहीं, उठते ही। कई लोग इस बात को समझते नहीं कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, संकल्प करेंगे अच्छे, तब तक तो 100 संकल्प बुरे आ चुके होते हैं, फिर वो प्रभाव खत्म हो जाता। आंख खुली, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरे जैसा खुश कौन होगा, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं जिसे भगवान मिल गया। बाबा मैं तो बहुत दुखी हूँ, इसने मुझे बहुत तंग किया है, इसको ले जाओ दुनिया से तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं। बाबा कहेगा इसको यहीं रखना, मुझे तो अभी तुम्हारी परीक्षा लेनी है, तुम्हें पावरफुल बनाना है। बाबा से ये सब बातें नहीं करनी है। तो सभी मधुबन का बहुत फायदा उठाएंगे। आज दूसरा दिन है ना आपको, ठीक है, आनंद लो। पहला दिन आज का भट्टी का बहुत आनंद लो आप यहाँ, और अपने को चार्ज करके जाना पूरी तरह, और ऐसा चार्ज कर लेना, ये नहीं कि डिस्चार्ज होके दोबारा आए, डिस्चार्ज होके दोबारा नहीं आएंगे, सारे संसार को चार्ज करके फिर आएंगे और पावर भरने के लिए। तो डिस्चार्ज तो हमें बैटरी को होने ही नहीं देना है, रोज सवेरे चार्ज कर दो और एक प्लान मन में ले लो, आज मुझे सारा दिन ये करना है, तो सारा दिन आनंद में बीतेगा। जो सात चीजें मैंने पुरुषार्थ की लिखाई है ना आपको, वो कल सवेरे सातों कर लेना तो अमृत वेले का समय भी बहुत अच्छा बीत जाएगा। ओम शांति।